सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने सम्यक् दर्शन चरण गुण पाय कुकर्म कृपाय केवल ज्ञान उपाय प्रभु भये भजो शिवराय जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा चरण धारी केवल रहे पावे पद निर्वाण।
ये जो करणानुयोग नाम का अनुयोग है भगवान की दिव्य ध्वनि में चार अनुयोग द्वारा कथन आता है। उसमें से करणानुयोग में जीवों के परिणामों की सूक्ष्मता और कर्मों आदि संबंधी जो बात आती है उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। हम कर्म का जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर्म को जानने के लिए नहीं, परंतु कर्म के उदय में जो कोई बातें होती है उससे जीव भिन्न है ये जानने के लिए उसको जानना। आप कहेंगे स्व को जानना है तो पर को क्यों जान रहे हैं? तो यह स्व नहीं है इसलिए। अभी हम घूमने गए ना तो बाकी के आजू बाजू के घर भी देख लिए, तो ये अरविंद भाई का घर नहीं है। हमें जिस घर में प्रवेश करना है तो अपना घर पता चलना चाहिए, वैसे पर का भी घर पता क्यों चलना चाहिए? ये मेरा नहीं है पर का है। ऐसे ही जीव और कर्म हमने देखा अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, और जो कर्म बंधे हुए वो तो कुछ काल के लिए ही बंधे हुए होते हैं, बाद में उसका उदय आता है, उदय आता है तो उसका फल भी मिलता है। तो कर्म के उदय में जो कोई फल मिलता है वह जीव का स्वरूप नहीं है ये बात हमको देखनी है, क्योंकि हमने अनादि से उसके कर्म के फल स्वरूप जो कोई बातें होती है उसी में हमने मैं पना मान लिया है। वो कैसे नहीं है उसको हम देखेंगे। अब करणानुयोग पुस्तक के आधार से चर्चा चलेगी। यहाँ पर पहले हमने 9 पेज पर आते हैं हम। हाँ
पास बुक थे करणानुयोग
पुस्तक को ले लो। हाँ। गुजराती नंबर पेज नंबर
लिमिटेड कॉपी
जितना में गुजराती कई पेज है
9
पेज फर्स्ट चैप्टर नो लास्ट पेज
नहीं सेकंड चैप्टर शुरू होता है
उसके
नहीं तो उसके पहले वाला
तो 8
हाँ 8 नंबर का गुजराती में 8 नंबर का उसमें पहले चैप्टर का जो कोई तात्पर्य वहाँ लिखा है उसमें क्या क्या बातें आई है उसको हम दोहरा के आगे चलेंगे। गुजराती 8 नंबर के पृष्ठ पर हम देखेंगे। और किसी को चाहिए पुस्तक? यहाँ
हिंदी है।
देखते अभी हम पहले कर्म है क्या है तो हमने देखा वो पुद्गल की अवस्था है, स्कंद है। तो स्कंद है तो स्कंद का अर्थ क्या होता है कि अनेक परमाणुओं का जो बंध हो जाता है इकट्ठे हो जाते हैं जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसको स्कंद कहने में आता है। तो ये स्कंद के भी बहुत सारे वेरिएशंस है जो हमने दोपहर में भी देखे थे। तो कारमान वर्गना नाम का जो कोई पर्टिकुलर स्कंद है ऐसे स्कंधों का जो रूपांतर हो जाता है कारमान वर्गना ये रॉ मटेरियल हुआ उसमें से जो उसका परिवर्तन होकर कर्म जिसको कहते हैं वो बन जाते हैं वो स्वयं उसकी पुद्गल की योग्यता से बनते हैं। परंतु वो क्यों बनते हैं उसमें निमित्त किसका होता है तो जीव के भावों का। जीव जितने प्रदेश में है उतने ही प्रदेश में क्या पूरे लोकाकाश में कारमान वर्गना भरी हुई है, परंतु जीव के राग द्वेष मोह के निमित्त से यहां जो कारमान वर्गना है उसमें से कुछ कारमान वर्गना है सभी के सभी नहीं कुछ कारमान वर्गणाएं विशिष्ट कर्म रूप से परिणमित हो जाती है तो उसको कहते हैं हम कर्म। देखो यहाँ पहले पॉइंट पर लिखा है जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारमान वर्गणा। प्रत्येक द्रव्य स्वयं से परिणमित होता है, हमने देखा ना उसको, तो उसको जिसको कहते हैं निज शक्ति, उपादान शक्ति, पुद्गल भी अपनी शक्ति से परिणमित होता है। तो कर्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होती है, परंतु उसमें निमित्त है जीव के मोह राग और द्वेष के परिणाम। उसकी जो विशिष्ट अवस्था होती है उसको कर्म कहते हैं। अब जो कर्म यानी कर्मान वर्गणा कर्म रूप हो गई, तो जो पुराने ऑलरेडी कर्म थे उसमें ये नए कर्म आकर जुट जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं वो कर्म का बंध हो गया। जीव के प्रदेशों के साथ कुछ काल तक रहेंगे, जीव मरकर एक भव से दूसरे भव में चला जाता है, तो भी वो कर्म उसके साथ, वो प्रदेशों के साथ जुड़े हुई अवस्था में चले जाते हैं, उसको कहते हैं संश्लेष संबंध। तो ये सेकंड पॉइंट हमने देखा, उसको फिर पढ़ते हैं, यहां से पढ़कर देखेंगे। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कर्माण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ जो विशिष्ट संश्लेष संबंध होता है, आत्म प्रदेश यानी आत्मा के प्रदेश, गुजराती आठ नंबर आठमोपान सेकंड पॉइंट। देखो यहां एक शब्द आया संश्लेष संबंध। संश्लेष संबंध ऐसा संबंध है तो कुछ काल के लिए तो सेपरेट नहीं हो सकता। जैसे हम कहते कोई तो संयोग में चीज है, अभी घर हमारे संयोग में, पर हम घर छोड़कर घूमने भी जा सकते हैं। जैसे गहने हैं, कपड़े हैं, हमने वो गहने उतार कर कपाट में रख दिया और हम बाहर घूम आए, जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ चले। आप कहेंगे शरीर के साथ तो संबंध है ना, वो भी एक बहुपुरता है। ये शरीर छोड़कर हम दूसरे भव में चले जाते हैं, परंतु कर्म तो ऐसे है, जब तक वो जीव के साथ बंधे हुई अवस्था में है तो जीव उसको छोड़कर एक कर्म थोड़ा हम इंडिया में छोड़ के आए कि नहीं यहां पर तो जैसे शरीर साथ आया है वैसे कर्म भी आए हैं साथ में, तो वो तो भव भवांतर उसके साथ रहते हैं जीव के, इसको कहते हैं संश्लेष संबंध। है तो दोनों भिन्न, जीव भिन्न है कर्म भिन्न है, एक ही क्षेत्र में दोनों रहते हैं। जैसे अभी शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, परंतु जहां मैं हूं वहीं पर यह शरीर के परमाणु भी है, और वो ऐसे इकट्ठे एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हैं। एक क्षेत्रावगाह नाम याद है ना, एक क्षेत्र में दोनों अवगाह करते हैं, यानी सुपर इम्पोज है एक दूसरे पर और एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह। तो आत्मा जहां पर है वहीं पर ये कर्म परमाणु जो जिसको हम कहेंगे ये बंधे हुए है वो रहते हैं, वहीं पर वो तेजस शरीर नाम के परमाणु भी रहते हैं, और वहीं पर ये औदारिक शरीर अभी जो है वो भी है। तो यहां अनेक अलग अलग द्रव्य है इकट्ठे रहते हैं, उसको कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। तो ये जो वहां जीव के साथ ये रह रहे हैं, संश्लेष संबंध हुआ है, उसको कहते हैं कर्म का बंध। क्योंकि शब्द तो हम तो वापरते हैं, बंध हुआ, उदय हुआ, परंतु उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है उसको हम यहां देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है बंध के चार भेद है, इसकी भी हमने विस्तार से चर्चा की थी आज। एक है प्रकृति बंध, आप दोहराएंगे मेरे पास, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। कर्म का बंध हुआ ऐसा हम कहेंगे कि कर्माण वर्गणा कर्म रूप से हुई है और जीव के प्रदेशों में अभी कुछ दिन कुछ सालों तक वो जुड़ी हुई रहेगी। तो जितने नंबर ऑफ परमाणु जुड़ गए हैं या कर्म रूप हुए हैं उसको हम कहेंगे प्रदेश बंध, नंबर ऑफ परमाणु को कहेंगे प्रदेश बंध। एक समय में कितने प्रदेश यानी कितने परमाणु बनते आपको मालूम है? एक समय में जीव के मोह राग द्वेष के परिणाम के निमित्त से एक एक समय में अनंत कर्म परमाणु बनते हैं, अनंत कर्माण वर्गणा बनती, और एक कर्माण वर्गणा में अनंत परमाणु होते हैं। तो ऐसा हर समय चल रहा है, कब से? अनादि से। तो कितना हेवी हुआ होगा ना, तो कहते जितने बनते हैं अनंत उतने ही एक समय में खिरते भी है, जो पुराने बंधे हुए। हम हमेशा वो उदाहरण देखा ना, एक टांकी है पानी की भरी हुई है, उसमें पांच नलों से पानी ऊपर से अंदर आ रहा है और नीचे से पांच नलों से बह रहा है बाहर, तो कब खाली होगी वो भरी हुई टंकी? जितना आ रहा है पानी उतना ही बह रहा है, कभी नहीं होगी। ऐसे हमारा अनादि से चल रहा है, जितना बंद हो रहा है उतना निकल भी रहा है, फिर भी नए नए कर्म आते हैं, पुराने जिनकी वो काल पूरा हुआ है रहने का वो निकल जाते हैं, फिर भी वो स्टॉक वैसा का वैसा बना रहता है। तो अनादि से इस कर्मों से हम मुक्त नहीं हुए हैं, तो क्या होता है उसके फलस्वरूप? तो नया नया कोई, जो आयु की बात चली ना आज बहुत लंबी, तो कोई अन्य अन्य आयु बनते रहती है परिणामों के निमित्त से, और हम भव अन्य अन्य धारण करते रहते हैं। अनादि से ही ऐसा ही होता आ रहा है। इसमें से छुटने का मार्ग तो अभी हम सुबह दोपहर को मिलेगा इधर भाई। हाँ, अभी तो कैसे बंधे है उसका मार्ग समझ में आएगा।
कौन से दिन बता देना, उस दिन
आएगा। हाँ बिल्कुल, कल ही देने वाले। और हम कहेंगे, रोज हम कहेंगे कल आने वाला है। तो ये प्रदेश बंध, प्रकृति बंध किसे कहना? तो ये जो ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, जो आठ मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, उसका परिणमन होकर जो उस प्रकृति बंधी है, ऐसा हम कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रकृति बंध। आठ अलग अलग कर्मों के उदय में जो कोई अलग अलग उसका स्वभाव है, उसका फल अलग अलग मिलता है, उसके कारण उसको प्रकृति कहते हैं। स्थिति बंध में हमने देखा था ड्यूरेशन, कितने काल तक वो कर्म बंधे हुए रहेंगे, बाद में उदय आएंगे तो उसको कहेंगे स्थिति बंध। और अनुभाग बंध, अनुभाग यानी फल देने की शक्ति, तो कितने उसकी इंटेंसिटी कितनी है कर्मों की, उसको कहते हैं कर्म का अनुभाग। तो जब बनता है तभी ये चार ही बातें निश्चित हो जाती है, कितने परमाणु आए हैं, किस प्रकृति रूप से वहां बंधे हैं, कितने काल तक वो रहेंगे और कितना फल देंगे। जितने कषाय अधिक उतने पाप कर्मों का फल अधिक मिलेगा और लंबी भी स्थिति बंधेगी। जितने कषाय मंद, जिसको हम शुभ राग कहते हैं, तो शुभ राग से क्या होगा? चार प्रकार से बंध से कितने बंध हो गए शुभ राग से? नरेन, सभी हो गए। अच्छा, फिर भी उसमें कुछ वेरिएशन होगा कि पाप कर्मों का अनुभाग कम बंधेगा, बंधेगा तो सही, कम बंधेगा और उसकी स्थिति भी कम बंधेगी। अभी वो किसका कितना बनता है उसका विषय अभी आगे, अभी तो हम बेसिक पहले से टर्मिनोलॉजी क्या है उसको देखेंगे यहाँ पर। तो स्थिति बंध और अनुभाग बंध की बात हमने देखी है। चौथा पॉइंट, कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है और स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकृति कहलाती है। जैसे ज्ञानावरण का स्वभाव क्या है? तो ज्ञान में जो हीनता होती है उसमें जो निमित्त होता है, अपनी भाषा में ज्ञान पर आवरण। तो ऐसा नहीं कि ज्ञान अंदर खुला है और उसके ऊपर कुछ ढक गया है, उसकी भी चर्चा अपनी हो गई है। तो ये प्रत्येक का अपना अपना स्वभाव है। जो मोहनीय है वो, उसका फल ज्ञान में कुछ नहीं मिलेगा, उसका फल किस में होगा? श्रद्धा की विपरीतता है या चारित्र की विपरीतता है। ये प्रत्येक प्रकृति का अपना अपना कार्य अपने अपने में होगा, वो दूसरे के कर्म के कार्य में उसका कुछ नहीं चलेगा। कर्म रूप होने योग्य कारमान वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि रूप प्रकृति रूप परिणमन होना प्रकृति बंध है। यह अभी हमने देखा था, उसी को यहाँ शॉर्ट में दोबारा लिखा है। प्रत्येक समय में जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ बनते हैं, उतने प्रमाण या संख्या को प्रदेश बंध कहते। प्रदेश यानी परमाणु, उसकी कितनी संख्या उसको कहेंगे प्रदेश बंध। कर्म रूप परिणमित हुए पुद्गल परमाणु जितने काल तक आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध से, अभी अभी बताए ना, एक क्षेत्र में रहना यही उनमें संबंध है। एक क्षेत्र में जो संबंध शब्द क्या सूचित करता है? दो भिन्न भिन्न है और उसका संबंध कहलाएगा। दोनों मिलकर एक हो जाए तो उसको संबंध कैसे कहेंगे हम? संबंध शब्द ही भिन्नता का सूचक है भिन्न, परंतु कोई अपेक्षा उसमें यह संबंध है। भाई बहन संबंध, पति पत्नी संबंध, वो तो दो है फिर भी उनमें कोई जो कुछ रिलेशन संबंध बताया जाता है, तो वो दो भिन्न है ये बात ख्याल में आती है। तो यहाँ एक क्षेत्र में रहते हैं, इतना ही उसमें संबंध है। और फिर उसके उदय में जीव में जो कोई राग द्वेष होता है उसको कहेंगे हम वो निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो कहते हैं कि एक क्षेत्रावगाह संबंध से बंधन में रहते, यानी जितने काल तक वो जो ड्यूरेशन है उसको कहेंगे स्थिति बंध। सातवां पॉइंट है बंधने वाले कर्म की फलदान शक्ति को। फलदान शक्ति यानी उसमें कितनी पावर है, कितना अनुभाग है, कितनी इंटेंसिटी है। जैसे क्रोध नाम का कर्म है, जीव यहाँ क्रोध रूप परिणमित होता है तो वहां क्रोध कर्म का उदय कहलाता है। तो वहां तीव्र उदय है, यहाँ जीव के तीव्र परिणाम भी चलते हैं। इसको कहते हैं निमित्त संबंध। उसका कर्म अपने को क्रोध नहीं कराते, ना ही कर्म अपने को ज्ञान कराते हैं। कर्म तो अपने में परिणमित होते हैं, जीव स्वयं अपनी योग्यता से अपने में परिणमित होता है। फिर भी यहाँ तीव्र उदय है तो हम कहेंगे ये तीव्र उदय है और यहाँ जीव के तीव्र क्रोध चल रहा है। जैसे आपका एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है, बैरोमीटर, ये जो कुछ आपके पास ये लगे है सब, तो वो क्या बताते हैं कि टेम्परेचर कितना है। वो टेम्परेचर को गवर्न करते हैं कि खाली बताने वाले है? वो बताने वाले, करने वाले नहीं है। ऐसे ही कर्म का उदय बता रहा है कि ये जीव कितना वहां राग द्वेष रूप हो रहा है। वो जीव को करता नहीं है, जीव अपने में से अपने में जो कोई परिणाम करता है, कर्म का उदय या जो कोई बात है वो बताने वाले हैं। तो जीव के परिणाम देखकर हम कह सकते हैं कि कर्म का उदय चल रहा है। और कर्म के उदय की तरफ कोई देखेंगे, भगवान को तो पता है, अवधि ज्ञानियों को भी वो पता चलता है, तो वो तो कह सकते कि ये जीव के ये परिणाम चल रहे हैं। अभी कोई मुनिराज ध्यान में है, बाहर तो कोई परिणाम नहीं दिख रहे उनके, तो उनके कर्म के उदय को देखकर भगवान कहेंगे ना कि इनके ये परिणाम चल रहे हैं। वैसे तो भगवान तो डायरेक्ट भी उनके परिणामों को जानेंगे। तो जहां जितने कर्मों का उदय है वहां वैसे परिणाम चल रहे ऐसा हम कहेंगे। जैसे जिसका अभ्यास है अभी गुणस्थान का, तो दसवें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है ऐसा कहेंगे। तो जीव के परिणाम भी चल रहे, वो जीव को स्वयं को भी पता नहीं है ऐसे परिणाम चल रहे, क्योंकि वो तो तभी ध्यान में है, उसका उपयोग वो कोई राग द्वेष के उसको जानने में है ही नहीं है। क्योंकि ध्यान अवस्था में तो आत्मा का आनंद का अनुभव चल रहा है, तो उस समय भी जो राग है वो उनके अपने ख्याल में भी नहीं आता, जिसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक राग। उसको भी प्रूव कैसे कर सकते, वहां कर्म का उदय चल रहा है। बाहर तो ऐसी कोई राग की यानी दिखाई भी नहीं देता है, वैसी कोई क्रियाएं भी नहीं है, वो जीव को भी पता नहीं है कि उसमें ऐसे परिणाम हो रहे हैं। तो ये बताने वाले हैं, इंडिकेटर है। अब स्थिति बंद हो गया, बंधने वाले कर्म की फलदान वो भी हो गया, अनुभाग बंद कहते हैं। आठवां पॉइंट, अनेक समयों में बंधे हुए कर्म, क्योंकि हर समय बंध रहे हैं, तो अनेक समयों में बंधे हुए कर्म जीव प्रदेशों के साथ रहते हैं, उसे सत्ता या सत्व कहते हैं। पहले बंधे हुए हैं और हर समय बंध रहे हैं, और जब उनका काल पूरा हो जाएगा, स्थिति पूरी होगी, तब वो खिर के अन्य रूप हो जाएंगे, उसका परिणाम बदल जाएगा। तब तक क्या कहेंगे उस कर्म को, वो सत्ता में पड़े हैं। जैसे हमें पता है श्रेणिक राजा ने यहाँ तीर्थंकर प्रकृति बांधना शुरू की थी, अभी वर्तमान में कहाँ है श्रेणिक राजा, नरक में। नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, तो उनकी सत्ता में पड़ी है तीर्थंकर प्रकृति। उदय कब आएगा? हाँ, अगली 24 में। कब वो यहाँ जन्म लेंगे तभी होगा क्या उदय?
केवल ज्ञान।
हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होने पर होता है। तब तक क्या कहेंगे उस कर्म को, सत्ता में पड़ा। हमारे में भी जितने कर्म बनते हैं वो सारे सत्ता में पड़े हैं, और फल किसका मिलता है, जिसकी मैच्योरिटी हुई है उसका। अभी क्योंकि हम, अरे हम तो इतने अच्छे हैं, इतने परिणाम अच्छे हैं हमारे, हम तो सबको मदद करते, तो ये हमारे ऐसा आकरा प्रसंग हम पर क्यों, हमको ऐसा रोग क्यों हुआ, हमें ऐसे संकट क्यों है, ऐसा लगता है ना। अभी बातें सबको सुनी, सबके मुंह से, ये लक्ष्मी छाया बिल्डिंग गिर गई, कितने वहीं पर मर गए, कोई जख्मी हो गए, कोई जो कोई नुकसान हुआ, तो हम तो ऐसा, हमारे तो कोई ऐसे बुरे परिणाम नहीं थे, हम पर ऐसा संकट क्यों आया? तो हम क्या कहते, वो पुराने बंधे हुए कर्म का फल अभी मिल गया है, तब तक तो सत्ता में पड़े हैं। अभी भले हमारे उपयोग अच्छे चल रहे हैं या हमारे जो बिहेवियर या राग द्वेष के परिणाम है, अभी पुण्य कर रहा है कोई जीव, फिर भी उसके कोई पुराने पाप कर्म का उदय कब आए हो तो हमें तो पता नहीं ना, अंदर पड़े हैं सब, सत्ता में पड़े हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म का कुछ फल नहीं मिलता, जब वो उदय में आते हैं तब उसका फल मिलता है। तो उसमें तो वर्षों भाव बाद, भवों बाद भी मिलता है, क्योंकि ये कर्म तो सागरों के बनते हैं, और वो सागर क्या है तो बहुत बड़ा माप है उसका।
प्रदेश बंध का क्या उपयोग?
हाँ, प्रदेश बंध का अर्थ होता है नंबर ऑफ परमाणु।
ना वो तो बराबर है।
हाँ,
उसकी उपयोगिता क्या है? क्योंकि दूसरी जो दोनों चीजें स्थिति बंध और अनुभाग बंध का पता कितना टाइम है।
हाँ,
और कितनी इंटेंसिटी से
प्रदेश,
तो प्रदेश बंध का प्रकृति का पता चलता है कौन सा कर्म है।
देखो
प्रदेश का क्या उपयोग होता है
आपका ऐसा प्रश्न है। चार प्रकार के बंध तो देखे, तो स्थिति बंध और अनुभाग बंध में तो पता चलता है कि उसका कुछ फल मिल रहा है, कुछ हो रहा है। प्रदेश बंध से क्या लेना देना, नंबर ऑफ परमाणु कितने बनते हैं? तो देखो ये चार प्रकार के बंध है ना, तो उसमें से स्थिति और अनुभाग क्यों बनते हैं? तो कषायों से। जब कषाय कहते हैं तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय, चारों को यहाँ कषाय कहा, तो उसके कारण ये दोनों बनते हैं। जब ये कुछ नहीं रहेंगे, यानी मोहिनी पूरा नष्ट हो जाएगा, तो ये बंधेंगे भी नहीं। फिर भी प्रदेश बंध और प्रकृति बंध क्यों होते हैं? दो योग के कारण होते हैं। तो जहां योग ज्यादा है वहां ज्यादा परमाणु आते हैं, परमाणु ज्यादा है इसलिए ज्यादा फल मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, उसका उसके फल के साथ कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए अभी तो मिथ्यात्व अवस्था में तो सभी कर्म बन रहे हैं, जब केवल ज्ञानी होते हैं तो उनके कितने कर्म बनते हैं? एकमात्र साता वेदिनी का 13वें गुणस्थान में बंद है, वहां भी स्थिति अनुभाग है ही नहीं है, जिस समय में आए उस समय में चले गए, तो वहां तो सभी अनंत परमाणु जितने होते वो एक ही प्रकृति में आते हैं उनके। अभी हम 8 कर्म बांध रहे हैं ना, तो जितने परमाणु आते हैं वो 8 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो एक एक 1/8 आएंगे, और वहां तो जितने बांधेंगे सभी एक में आ जाएंगे, फिर भी उसमें कुछ लेना देना नहीं उससे। प्रकृति और प्रदेश वो तो माप क्यों, कि ये योग को बताने वाले हैं, योग के कारण आते हैं इसलिए इसका वर्णन आता है। प्रकृति में तो समझते हैं हम कौन सी प्रकृति बनती है, तो उस अनुसार देखिए जब ऊपर के गुणस्थानों में जीव जाता है, आत्मानुभव होता है, तो विशिष्ट प्रकृति बंधना रुक जाती है। मिथ्यात्व प्रकृति का बंध मिथ्यात्व में ही है, ऊपर है नहीं है। अनंतानुबंधी प्रकृति का जो बंध है, उदय है, वो पहले दूसरे गुणस्थान में है, ऊपर नहीं है। तो जिसने समय दर्शन प्राप्त किया है उसके ना मिथ्यात्व का बंध होता है, उदय होता है, ना अनंत अनुबंधी का बंध उदय है। अन्य जो प्रकृति होती है उसमें भी वो इसका जो प्रकृतियों का प्रदेशों का सब ये वर्णन आएगा, अभी जो पंचलब्धि में चलेगा ना। तो जब जीव आत्मानुभव करता है, अंतरंग में स्थिरता करता है, तो उसमें क्या क्या बातें बनती है कर्मों में, सत्ता में है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, नया बंध होता है उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और ऑर्डिनरीली हमने देखा ना 5 नलों में से जाता था, अभी वो भी बढ़ेगा, वो इन्हें आएंगे कम जाएंगे ज्यादा। तो ये सारा जो समझाने के लिए ये चार ही प्रकार से वो बंध में क्या क्या होता है, सत्ता में पड़े हुए में क्या क्या होता है, क्योंकि हमें तो पारिभाषिक शब्द सुनने हैं, उससे अभ्यास करना है आगे। तो सत्ता में पड़े हुए के जो प्रदेशों में क्या होता है, प्रकृति में क्या होता है, स्थिति में क्या अंतर हो जाता है, और अनुभाग क्या होता है। अभी कर्म बांधते समय तो बंध गए, अभी हमारे जो कोई हमने राग द्वेष के परिणाम किए हैं, मान लेते किसी ने बहुत कुछ बुरे परिणाम किए और अंदर पड़े हैं कर्म उस रूप से, जैसे हमने श्रेणी की बात की थी दोपहर में, तो उनके जो परिणाम हुए सम्यक दर्शन हुआ, तो अंदर जो पड़े थे कर्म उनमें क्या क्या वेरिएशन हो गई। बांधे तो किसी जीव ने बहुत बुरे कर्म बांधे हैं, अभी उसके परिणाम कुछ अलग है, तो उस अलग परिणामों के कारण नया बंध कैसा होता है और पुराने बंधने हुए में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये जो सारे रिलेशन है वो इस पारिभाषिक शब्दों के द्वारा हम समझा सकते हैं। इसलिए इसके पहले यहां डेफिनेशन रूप से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आगे जितना पढ़ेंगे तो अंदाजा आएगा कि इसका क्या उपयोग है। यानी उसके जीव के फल में कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने नंबर ऑफ परमाणु उदय में आते हैं या बनते हैं, उसमें जीव को कुछ उसका फल नहीं मिलता है। वो योग को बताने वाले हैं, इतनी बात है उसमें।
योग से होता है, मगर उसका किसी ने ज्यादा कर्म बांध दिया
नंबर
और किसी ने कम बांध दिया,
उसमें कुछ
तो कुछ है ही नहीं,
कुछ नहीं है उसमें, क्योंकि वो तो योग के कारण बनते हैं, परंतु योग कम है, कम परमाणु है, इसलिए उसमें कुछ फल कम होगा ये बात नहीं होती है। जैसे पंचेंद्रियों को तीव्र योग, ज्यादा योग है तो अधिक परमाणु बनते हैं, अब एक इंद्रियों में कम योग है तो उनके कम बंधेंगे, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आपका प्रश्न क्या है?
तो जब अपन योग बोलते हैं तो योग का जब कंपन होता है तभी कर्म आकर्षित होते हैं।
हाँ,
तो तेरहवा गुरुस्थान में तो कसाई तो नहीं है।
हाँ,
तो फिर वहाँ कैसे योग का कंपन होगा?
आपका प्रश्न है कि योग का कंपन होता है तभी कर्म आकर्षित होते हैं। आपने उत्तर दिया है प्रश्न में, फिर भी मैं उसको दोहराऊंगी। तो तेरहवें गुणस्थान में कषाय नहीं है तो वहाँ कंपन कैसे होता है? तेरहवें गुणस्थान का जरा नाम बता दीजिए मुझे।
संयोग
केवली, यानी योग है, आप स्वयं बता रही हूँ, है ना? तो योग किस निमित्त से होता है ये बात हम देखेंगे। कषाय किस निमित्त से हो रहे है? चारित्र मुनि के उदय में। योग किस निमित्त से हो रहा है? योग होता क्यों है भाई, आपको पता है योग क्यों होता है? आत्मा के प्रदेशों के कंपन को यहाँ योग कहा है, उसमें कषायों को नहीं लेना है। कषायों की जो चंचलता है वो तो अलग बात है।
अगर आत्मा तो स्थिर है तो फिर कंपन की बात कहाँ है?
आत्मा स्थिर है, कैसे स्थिर है? आत्मा के प्रदेशों में चंचलपना, उसके जो कुछ वाइब्रेशन चल रहा है। संयोग केवली भी ऐसे तो स्थिर बैठे हैं, तो उनके प्रदेशों का कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा? योग तो है कंटिन्यूअसली, अनादि से हो रहा है, कब तक चलेगा? संयोग केवली के अंतिम समय तक। तो ऐसा कुछ उसमें निमित्त होना चाहिए कि जिसके कारण ये चंचलता नाम की ये भी विभाव है। हो आत्मा का स्वभाव है नहीं है, क्योंकि सिद्धों में कोई कंपन नहीं है, अयोग केवली में भी योग नहीं है, कंपन नहीं है। तो योग नहीं है, संयोग में है।
योग गुण है,
योग गुण का योग गुण भी कह सकेंगे हम, परंतु यह योग नाम की जो चंचलता है वो विभाव परिणमन है।
तो अगर योग गुण है तो गुण तो
सकंप होना ये विभाव है और निष्कंप अवस्था ये स्वभाव है।
नहीं, मगर अगर योग गुण है तो योग तो गुण तो
उस गुण की बात नहीं लेना आपकी, जो परिणमन नहीं वो चंचलता वो गुण नहीं है, चंचलता ये विभाव है और निष्कंप अवस्था ये स्वभाव है। आत्म प्रदेशों के कंपन रुक जाना ये उसका स्वभाव परिणमन है। हम उसको योग नाम से नहीं कहेंगे, निष्कंप और सकंप ऐसा कहेंगे तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि योग शब्द भी अलग अलग अर्थ में आते हैं। जैसे योगी क्यों कहते हैं, मुनिराजों को योगी क्यों कहते हैं? योग का अर्थ होता है जुड़ना, आत्म स्वभाव के साथ जुड़ गए, उसी में स्थिर हो गए, तो हम कहेंगे वो तो योगी है। वो योग की बात नहीं, वो कंपन वाले योग की बात नहीं है वो।
और जब भी मन वचन काया योग बोलते हैं,
मनोयोग वचन योग और काय योग ये उसके नाम है, क्योंकि वहां जो कंपन होता है उसके द्वारा मनोवर्गणा या काय की वर्गणा, जो आहार वर्गणा है, और वचन वर्गणा जो होती है भाषा वर्गणा, उसका ग्रहण होता है, तो उसके द्वारा हम कहते हैं वो मनोयोग काय योग वचन योग। परंतु मन वचन और काय ये तीनों ही जड़ है, तो उसकी क्रिया या आत्मा का योग नहीं होता, समझ में है ना? शरीर का हलन चलन वो आत्मा की क्रिया नहीं है, उसको योग नहीं कहते। तो योग तो आत्मा की चंचलता है, उसके कारण शरीर के परमाणुओं का ग्रहण होता है, तो उसको कहेंगे काय योग। अरिहंत भगवान तो निश्चल अवस्था में ध्यान में, अभी ध्यान तो उपचार से है, फिर भी ऐसे निश्चल बैठे हैं समोचरण में, कहीं उठे नहीं, चल नहीं, व्यवहार नहीं हो रहा, तो उनके योग है कि नहीं है? क्योंकि हमने योग समझा किसका है, बाहर की जो क्रिया होती है शरीर का हलन चलन, उसको हमने योग समझा है, वो वैसा योग नहीं है। तो ये आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना अनादि से है, विग्रह गति में भी है, तो ये क्यों होता है? योग की चंचलता क्यों होती है, ऐसा सवाल हमें उठना चाहिए। और अभी हम कर्णान योग में देखते हैं तो उसमें तो निमित्त की अपेक्षा आती है,
कर्म के प्रदेश बंध के कारण
नहीं, वो योग के कारण कर्म का प्रदेश बंध होता है। योग यानी कर्माकर्षण शक्ति, आत्मा में यहाँ योग उत्पन्न होता है तो उसके कारण कर्म बनते हैं, कर्माण वर्गना कर्म रूप से होते हैं। ये हम कहीं कर्माकर्षण है, कर्म को आकर्षण करना, कहीं बाहर से तो कर्म अंदर आते नहीं है, वही के प्रदेशों में जो कर्माण वर्गना है वो कर्म रूप होती है, फिर भी हम उसको कहते हैं कर्माकर्षण शक्ति। योग के कारण शरीर के औदारिक शरीर के परमाणु भी लिए जाते, ग्रहण किए जाते। हम मनुष्य और तिर्यंच जो है वो तो औदारिक जाति के परमाणु का ग्रहण करते हैं, और देवों का शरीर कौन सा शरीर कहलाता है पता है आपको? वैक्रियक शरीर। तो वो देव आते हैं यहाँ पर पंच कल्याणक में, वो कौन सी जाति के परमाणु को ग्रहण करेंगे? वैक्रियक जाति के। अभी हम इंडियन है, हमारे विशिष्ट कलर है, तो अमेरिका में आएंगे तो यहाँ के गोरे परमाणु ग्रहण करेंगे क्या? क्या अपने कलर वाले ही परमाणु को ग्रहण करेंगे? तो इसमें निमित्त कौन है पता है आपको? तो मैं बताऊंगी, नाम कर्म। परंतु वो नाम कर्म तो शरीर के कलर में आपने लगा लिया, तो एक कंपन क्यों होता है? तो उसका कारण है कि शरीर नाम कर्म, कौन सा शरीर नाम कर्म? कर्म की बात चल रही, कर्म के योग की बात चल रही, कर्म का ग्रहण क्यों होता है? कारमान शरीर नाम कर्म का उदय जब तक है तब तक योग यानी चंचलता है, और उसके कारण कर्म का ग्रहण होता है। अब हमें औदारिक जाति के परमाणु क्यों कह लेते हैं? औदारिक शरीर नाम कर्म के कारण जीव में वो भाव योग यानी वो शक्ति है, और उसके कारण वो जीव उस कारमाण वर्ग औदारिक शरीर के आहार वर्गना का अवलंबन लेता है, तो उसको कहेंगे हम वो काय योग है, ऐसे भाषा वर्गना का अवलंबन लेता है तो उसको हम वचन योग कहेंगे। तो ये शरीर नाम कर्म के उदय में, शरीर की बात नहीं है, शरीर नाम कर्म की बात चल रही है। हम अभी देखेंगे नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों की बात करेंगे, अभी हम पंचलब्धि में। तो उसमें जो औदारिक शरीर नाम कर्म है, वैक्रियक शरीर नाम कर्म है, तेजस शरीर नाम कर्म है, और कारमान शरीर नाम कर्म है, ये जो अलग अलग नाम कर्म है, आहारक भी आता है उसमें, आहारक शरीर नाम कर्म, उसका उदय जब है तब उस जीव को योग उत्पन्न होता है उस जाति का, और उस जाति के परमाणु का ग्रहण होता है, इसको योग कहते हैं। नॉट ओनली यहां तो कर्म की बात हम देख रहे हैं, तो योग के कारण उतने प्रदेश का बंध हुआ हमने कहा, वैसे ही अब जो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो हम शरीर के भी परमाणु कितने नंबर में लेते हैं, नंबर ऑफ परमाणु, वो उस पर निर्भर है, उसका भी पूरा वो सारा गणित आता है, एक समय में कितने परमाणु लेते हैं, कितना संचय होता है, कितने कितने क्या बातें होती। तो ये जो कंपन है आत्म प्रदेशों का कंपन, अभी हम कर्म की ही बात लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन हमें ज्यादा नहीं लेना है, तो ये प्रदेश बंध और प्रकृति बंध योग के कारण होता है। योग क्यों होता है? तो कारमान शरीर नाम कर्म के उदय में योग होता है। तो संयोग केवली को योग है और अयोग को नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके कारमान शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुणस्थान के अंत तक ही है, बाद में उदय मिट जाता है, सत्ता में पड़े रहते हैं, और बाद में उसका 14वें के अंत में उसका क्षय हो जाता है। तो उदय है तब तक उसका फल है, तो तब तक उनके योग है और तब तक कर्म का ग्रहण है। अब आगे बढ़ेंगे हम,
सत्ता में पड़े रहते हैं, चौदहवें गुणस्थान में होते ही सत्ता में रहते हैं,
सत्ता में ही होते हैं, क्योंकि किसी भी कर्म का क्षय 13वें के अंत में होता ही नहीं, उदय मिट जाता है बहुत सारी प्रकृतियों का। ये सारे ही बिल्कुल साइंटिफिक है और इसका पूरा टेबल है, कौन से गुणस्थान में कितने कर्म उदय में है, कहां उदय मिट जाता है, उदय मिटने पर कितने कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं और फल दिए बिना वो उसका क्षय भी हो जाता है बाद में। तो 13वें गुणस्थान के अंत में इतनी सारी प्रकृतियों का, वहां तो 30 प्रकृतियों का उदय मिट जाता है, फिर भी वो सत्ता में पड़ी रहेगी। 14वें गुणस्थान में, अभी यहां तो अपना विषय नहीं हुआ है, तो ये 14वें गुणस्थान में तो कितने कर्म बाकी? अभी देखो, 13वां गुणस्थान शुरू हुआ, चार घाती कर्म का नाश ऑलरेडी हुआ है, अब कितने रहे?
चार
रहे। परंतु चार में तो आयु का तो जो कोई वर्तमान आयु उतनी आयु है, वेदनीय में भी दो वेदनीय, नाम कर्म में बहुत सारी प्रकृतियां, पर इतनी सारी प्रकृतियों की वहां तो कितने की तो सत्ता भी नहीं है, कितनी तो 9वें गुणस्थान में क्षय हो गई है। जितनी है उसमें से भी सभी का तो उदय नहीं है, एक मनुष्य गति नाम कर्म का उदय होगा तो अन्य जाति जो गतियां वो अंदर पड़ी रही है वहां पर उसका उदय तो होने वाला ही नहीं है, देव गति वहां अंदर पड़ी रहेगी उसका तो उदय नहीं है। ऐसे ही अन्य जो कोई प्रकृतियां है जिनका पूर्व पहले क्षय नहीं हुआ है, ऐसी कितनी सारी प्रकृतियां वहां पर है,
वो केवली समुद्र घाट में नाश नहीं हो जाते?
नहीं, अच्छा। समुद्र घाट में उनकी स्थिति कम हो जाती है, नाश किसी ने पूरा क्षय किसी भी कर्म का नहीं होता, स्थिति में उसमें परिवर्तन होता है। 13वें गुणस्थान में एक भी कर्म का क्षय होता नहीं है, 13वें के अंत में उदय मिटा है, 14वें में जाकर उनका क्षय होता है। तो उसमें से 85 प्रकृति रहती है, 72 का क्षय होता है उपांत समय में, लास्ट बट वन में, 14वें गुणस्थान के लास्ट बट वन समय में, और बाकी जो है वो अंतिम समय में 13 प्रकृति का। तो उस 13 में से भी उदय तो 12 प्रकृति का ही रहता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, परंतु पहले बेसिक समझेंगे ना तो आगे बढ़ेंगे, ये सब बातें आएगी क्रम से। देखो तो इसके सत्ता की बात चल रही है, तो अनेक समयों में बंधे हुए कर्म जीव के साथ सत्ता में पड़े हुए। देखो कोई तीर्थंकर बनने वाला जीव है, उसकी भी सत्ता में एक इंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीन्द्रिय जाति, ये सारे कर्म बंधे हुए पड़े हैं, और फिर उनका वो 8वें 9वें गुणस्थान में जाकर वो क्षय करेगा। तो इसे सत्ता में कितने पड़े है और कितने उदय दिए बिना ही कोई जो अभी मुनिराज हो गए वो कर्म ट्रांसफॉर्म होकर किसी भी पद्धति से उसका तो क्षय हो जाता है, बहुत उथल पुथल हो जाती है। इसलिए हमको कर्म में कुछ नहीं करना पड़ता है, हम तत्व विचार करना शुरू करते हैं, अभी समय दर्शन होने की दूर है, तब से ही कर्मों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, इतने होते हैं कि अचरज लगे, अरे इस जीव ने कुछ किया ही नहीं, अरे बस ये स्वाध्याय कर रहा है और तत्व का विचार कर रहा है। तत्व विचार से ही ये सब कुछ होता है, कर्म में भी स्थित्यंतर होते हैं और जीव को समय दर्शन भी होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है, देखो तत्व विचार की महिमा, किसने भी व्रत तब कुछ किया नहीं है और कुछ नहीं किया है, फिर भी उसको तत्व विचार करने से समय दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और सम्यक दर्शन ही धर्म की शुरुआत है, वितरागता की शुरुआत है। कि तो क्या व्रत तप नहीं करे? अरे करे तो पुण्य बंधेंगे, एकाध भव उसका कुछ फल भी मिलेगा, परंतु उससे मिथ्यात्व नहीं टलेगा। व्रत तप करने के बावजूद सम्यक दर्शन होगा तभी जब जीव तत्व विचार करेगा। भले व्रत करो और तत्व विचार करो अच्छा है, व्रतों का निषेध नहीं है, परंतु व्रतों के कारण सम्यक दर्शन नहीं होगा, तत्व विचार के कारण होगा। तो जीव जिसको ऐसे तत्व सीखने में अरुचि हो जाती है, उसको ये तो खाली पढ़ने से क्या होगा, आत्मा आत्मा करने से क्या होगा, इसे थोड़ा ही कुछ होना है, हम कुछ करेंगे, इसलिए जीव क्योंकि पता नहीं है ना क्या है, तो वो व्रत तप करते। तो आचार्य भी किसी की बुद्धि नहीं लगती तो कहेंगे हाँ चलो व्रत तप तो करो, इतना तो पाप से दूर हो, परंतु विशिष्ट प्रयोजन से कहने में आता है। परंतु हमारा प्रयोजन मूल में मूल जो अब तक नहीं किया अनादि से, वो करने की बात है, क्योंकि वो करने के बाद ही जीव को समय दर्शन होगा, तो ही उसका मोक्ष मार्ग शुरू होगा, उसके बिना उसका मोक्ष मार्ग होगा ही नहीं। इसलिए अत्यंत महत्व की और आसान है तत्व निर्णय, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत ग्रंथ पढ़ेंगे तो तत्व निर्णय होगा, ये बात नहीं है, सबसे आसान और सरल बात है। तो हमें सरल बात से कुछ होता ये पता ही नहीं होता, यह हमारा विश्वास नहीं होता। क्यों डॉक्टर? डॉक्टरों को पता है, उनके पास कोई पेशेंट आता है तो पता है ना कि सामने देखते कि ये तो बीमारी से वो तो सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ लिमिटेड है, ये तो खुद ही क्योर होने वाली है, तो बताएंगे कोई बात नहीं आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी डॉक्टर होता है। तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, कुछ और एक्सरे कराओ, ये वो कराओ, ये इतनी सारी लंबी लिस्ट बताएंगे, हाँ ये डॉक्टर अच्छा है। क्योंकि हमारा जो कोई सहज बातें होती है, हाँ सिंपल होती है, उस पर विश्वास नहीं होता, लगता है ना ऐसे, ये तत्व विचार से थोड़ा ही कुछ होने वाला है। तो तत्व विचार से क्या क्या हो सकता है ये हम कर्णान योग के माध्यम से देखेंगे, और ये बिल्कुल गारंटी से होता ही है ऐसा। तो सिंपल जो हमने बताया कि आत्मा का स्वरूप का विचार करो और समय दर्शन होगा, तो इतने से हो जाता है, होता है। तो जो नहीं मानते तो आप सीखो कर्म की गहरी बातें, तो फिर भी पता चलेगा तो इसी से होता है। ऐसा नहीं खाता तो ऐसा खा लो, पीछे से हाथ डाल। तो इतना ही शास्त्र का तो तात्पर्य इतना है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है, कर्म भी पुद्गल है, और कर्म का फल जो मिलता है वो पुद्गल का है, वो पुद्गल में उसमें उसके खाते में रखो, तो जीव की भिन्नता ख्याल में ले लो, इतना ही लेना है इसमें से। आप कहेंगे ये कर्म के नाम हमारे ख्याल में नहीं रहते, नहीं रहे तो इतना तो ख्याल में आया कि कर्म भिन्न है और मैं भिन्न हूं, ये मूल बात इसमें से लेनी है। अब हमने ये सत्ता की बात देखी है। कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। इतनी बातें तो इस चैप्टर में आ गई है। अब हम देखते हैं कि ये जो कर्म जो है तो उसमें दो विभाग होते हैं, एक तो है घाती कर्म और एक है अघाती कर्म। यही विषय पंचलब्धि में भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, इसलिए हम यहीं से लेते हैं घाती अघाती कर्म। आज दोपहर में हमने 8 कर्मों के नाम भी देखे थे, याद है किसी को? हाँ बोलो, अरविंद भाई बोलेंगे। हाँ क्या नवर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतरा, ये 4 हुए घाती कर्म। हाँ अभी अघाती, हाँ वेदनीय, नाम,
गोत्र,
आयु और नाम, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इस तरह से ये 8 कर्म है। उसकी जो उत्तर प्रकृति होती है, उत्तर प्रकृति उसके पेटा में, उसकी भी बात चलेगी। अभी तो हम यहाँ थोड़ी और बातें देखते हैं। यहाँ हम आते हैं, पेज नंबर है, हाँ वही, वो दूसरा चैप्टर निकालना है। देखो दूसरा पैराग्राफ, पेज इसमें तो 10 है, आप में जहाँ शुरुआत होती है दूसरे चैप्टर की, 9 नंबर होगा,
9
नंबर, हाँ सेकंड पैराग्राफ। पहले पत्र में हमने बंद और उदय शब्दों का अर्थ देखा था, उसके बारे में अधिक जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो देखो उसके तो कुछ बात नहीं है, हाँ जो हमने अभी तक देखा था, घाती कर्म 4 है और अघाती 4 है, इसको हमने देख लिया। तो उसके अंत में घाती कर्म नाम से पता चलता है वो किसी का घात करते हैं। घाती कर्म कहा ना, घात करने वाले, तो किसका घात करते होंगे उस पर विचार करेंगे। द्रव्य का घात करेंगे कि गुण का करेंगे? हर्षद भाई आप क्या कहते हैं, जो कर्म है वो द्रव्य का घात करेंगे कि गुण का करेंगे? हमने देखा ना ज्ञानावरणी, हाँ हाँ क्या कहते आप, गुण का करेंगे, हाँ आप क्या कहते, हाँ हाँ गुण का घात करेंगे। तो ज्ञानावरण कर्म ज्ञान गुण का घात करेगा, तो जीव जड़ हो जाएगा, नाश कर लिया ना उसने। क्या कहते मनीष भाई आप, आपने तो गुण की परिभाषा बोली थी आज दोपहर में,
आवरण डालते हैं
यानी क्या होता है, पर्याय में जो कुछ बातें होती है पर्याय में उसका फल मिलता है, ज्ञान गुण की पर्याय। तो घात करता है, नाश तो नहीं करता है, तो यहाँ प्रकट नहीं होने देने को घात कहा है। पूरा तो मिटा नहीं सकता, कोई भी आवरण ज्ञान आवरण ऐसा नहीं है कि ज्ञान को पूरा आवृत कर दे, ज्ञान होने ही नहीं दे, ऐसा कोई कर्म है ही नहीं है। ज्ञान जीव का स्वभाव है, और कैसी भी हीन अवस्था क्यों नहीं हो, जो हम निगोद कहते हैं, या पृथ्वी कायिक है, ये वनस्पति इतनी दिख रही है, वनस्पति कायिक है, तो इसमें उनमें भी ज्ञान का कुछ न कुछ अंश प्रकट है। ज्ञान पूरा मिट गया ऐसा हो ही नहीं, वो तो जीव का स्वभाव है। तो ज्ञानावरण का अर्थ क्या है, अभी हम पंचेंद्रिय है और वो एकेंद्रिय जीव है, तो उनके अन्य इतना जो ज्ञान की शक्ति है, हमें तो हमारे में भी केवल ज्ञान जितनी स्वभाव में शक्ति है, पर्याय में वो प्रकट नहीं हुई है तो हम उसको कहेंगे वो ज्ञान पर आवरण, ये भाषा की लिमिटेशन है, या जिसको हम कहते हैं ना शॉर्ट में बोलने की पद्धति है। परंतु वहां ना द्रव्य का घात होता है, ना गुण का घात होता है, ना ही पर्याय का घात होता है। जितनी स्वभाव में शक्ति है उतनी पर्याय में प्रकट नहीं होती है जीव के अपने कारण, फिर भी वहां क्या कहेंगे हम, कर्म ने इसका घात किया। तो जो जीव के गुणों के साथ ये निमित्तपना बनता है तो उसको कहते हैं घाती कर्म। ज्ञानावरण का निमित्त किसमें बनता है, तो यहाँ जीव का स्वभाव पूर्ण प्रकट नहीं होता है, ज्ञान की हीनता में निमित्त है। पर्याय की बात चल रही है ना, ज्ञान प्रकट होने की बात चल रही, पर्याय की बात है। दर्शनावरण पर्याय में वो दर्शन की हीनता चलती है, या हमने दूसरा भी देखा निद्रा के जो सारे है अलग अलग निद्रा के प्रकार, वो भी दर्शनावरण के उदय में होते हैं। तो इसको कहते घात किया। तो ये जो चार घाती कर्म है उसका फल क्या क्या मिल रहा है, ज्ञान की हीनता। देखो आप ये टेबल निकालना, वहां आपके और अधिक 15 नंबर है इसमें, आप में कितना है 14 नंबर होगा। कर्म का उदय ऐसा लिखा है वहां पर, एक टेबल बनाया 15 नंबर में ही है। देखो कर्म के उदय में क्या क्या फल मिलते हैं, तो पहला हमने कौन सा कर्म देखा था, ज्ञानावरण। उसके उदय में यहाँ ज्ञान की हीनता होती है। देखो अभी हम दो खाते खोलेंगे, एक कर्म का खाता एक अपना खाता। कर्म के उदय में जो कुछ बातें बनती है वो भले आपके पास रखो कोई बात नहीं, उसमें लेबल क्या लगाना है, वो कर्म का है, अपना नहीं है। किसी ने आपके पास कोई चीज रखी है उसकी धरोहर है, तो उसको अपनी मानेंगे तो क्या कहेंगे हम, क्या कहलाएंगे, चोर कहलाएंगे। अच्छा तो अभी हम चोर नहीं कहलाना चाहते। तो अभी जो जो बातें हैं तो वो भले रहेंगी, क्योंकि वो कर्म का अपने साथ वो संश्लेष संबंध हुआ है, वो तो कुछ छोड़ के जाने वाला है नहीं है। हमारे हाथ में एक बात है कि ज्ञान में हम उसको भिन्न मान सकते जान सकते हैं, तो अभी हमको उसका है ऐसा स्वीकार करना है और कुछ नहीं, वो भले रहे अपने पास। तो ज्ञानावरण के उदय में ज्ञान की हीनता होती है, तो जो हीनता है वो कर्म के खाते में डाल दो। अपने खाते में क्या रखना है, केवल ज्ञान स्वभाव है हमारा, तो वो परिपूर्ण स्वभाव अपने खाते में, और अभी जो वहां हीनता हुई है वो कर्म के खाते में। क्योंकि अभी हमारी भूल क्या हो रही, अभी जितना इंटेलिजेंस है ना हम अपने को उतना मात्र समझ लेते हैं, अपने को उतना ही मान लेते हैं, ये हमारी भूल है। अब दूसरा जो गुण है दर्शनावरण, उसके उदय में क्या होता है, दर्शन की हीनता हो जाती है। केवल दर्शन जितना हमारा स्वभाव है, सभी द्रव्यों को एक साथ उसका सामान्य अवलोकन हो जाए इतनी हमारी कैपेसिटी है, परंतु पर्याय में अभी हीनता चल रही है, वहां कर्म के उदय में उसका उसके खाते में डालना। तीसरी बात क्या होती है, मोहनी के उदय में क्या क्या होता है, तो मिथ्यात्व, जो दर्शन मोहनी के उदय में यहाँ श्रद्धा की विपरीतता होती है, मिथ्यात्व होता है, और चारित्र मोहनी के उदय में राग द्वेष उत्पत्ति होती है उसकी, उसका विभाव होता है। जहां ये दोनों ही कर्म नहीं है, दर्शन मोहनी है चारित्र मोहनी है, तो वहां तो जीव सम्य दृष्टि और पूर्ण वितरागी हो जाता है। तो ये विपरीतता किसके खाते में डालना है, कर्म के खाते में। हम स्वाध्याय करते हैं, शुभराग करते हैं, वो किसके खाते में रखते हैं, अरे उसको भी छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे, इतना तो पुण्य परिणाम होता है घंटे भर में, वो तो हमारे खाते में रखो ना, तो कहते वो रखेंगे तो नहीं चलेगा, वो तो कर्म बंध का कारण है और वो कर्म के उदय में होता है दोनों ओर से, तो कर्म के खाते में डालेंगे। अब ये दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में जो बाधा है अंतरा है वो भी सब कर्म के खाते में। तो जीव के अपने जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि की जो परिपूर्ण है स्वभाव वो उसके खाते में, और ये सारे कर्म के खाते में। अब ये तो हुए घाती कर्म, इन्हें जीव के गुणों के साथ डायरेक्ट संबंध है, ऐसे कर्म है। अब अघाती कर्मों के उदय में क्या क्या होता है उसको देखेंगे। वेदनी के उदय में क्या क्या होता है, संयोगों की अनुकूलता या प्रतिकूलता। तो हमने ये भी देखा था संयोग ना अनुकूल होते हैं ना प्रतिकूल होते हैं, जीव उसमें अनुकूलता या प्रतिकूलता की कल्पना करता है और स्वयं सुखी दुखी होता रहता है। तो उसमें ये निमित्त है। तो ये संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता यानी संयोगों में परम ही उसका फल मिलता है। दूसरी बात है आयु कर्म के उदय में क्या होता है, तो उसके ड्यूरेशन लाइफ स्पैन होता है। जीव तो अनादि अनंत है और ये जो लाइफ स्पैन है वो तो कर्म के उदय की बात है। नाम कर्म के उदय में शरीर की रचना होती है, तो शरीर अच्छा लंबा गोरा भूरा जो कुछ है तो उसमें क्या होगा, भिन्न है ना जीव से, शरीर की रचना हुई है तो हमने आज तक अपने को शरीर माना है यानी कर्म के उदय को अपना स्वरूप माना है। और मैं कैसा हूं तो अपना वो फोटो दिखाएंगे, फोटो देखेंगे, आईने में देखेंगे, हाँ मैं ठीक ठाक तो हूं ना, तो हम अपने को उस रूप मान लेते हैं। तो कर्म के उदय को हमने अपना स्वरूप माना है। शरीर में आत्मबुद्धि है, शरीर को हम मैं मानते हैं। शरीर में रोग हुआ तो मैं रोगी, शरीर अच्छा है तो मैं अच्छा, ये जो फील होता है ये तो कर्म के उदय को हमने अपना स्वरूप मान लिया है। और ये उच्च या नीच गोत्र में जो जन्म होता है जैसा मिलता है अपने को भी उस रूप को कहने लगता है। तो ये कर्म के उदय की बातें हैं, वो सारे कर्म में रखना है, मानना है, जानना है। शरीर को तो कुछ फेंकते नहीं सकते क्योंकि उसका संयोग तो बना है। अरिहंतों के भी शरीर है कि नहीं है, तो शरीर के होते हुए हम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण वितरागता प्राप्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शरीर वहां होने से कोई बाधा नहीं है। बाधा क्या है, क्यों है, शरीर मैं हूं ये मान्यता अपनी बाधक है। राग द्वेष तो होते रहेंगे, मुनिराजों में भी अल्प राग है, वहां पर उनके भी भक्ति पूजा का भाव है कि नहीं, उनके तो वंदना का भाव चल रहा है, स्तुति का भाव चल रहा है, यात्रा का भाव है, उनके उपदेश के भी भाव होते हैं, परंतु वो शुभ राग मेरा स्वरूप है ऐसा वो नहीं मानते। पुण्य के परिणाम होते जरूर है परंतु पुण्य से मुझे मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं मानते वो। तो ये मानना और स्वीकार करना, जानना, ये बातें हमारे अपनी अपने हाथ की बात है, उसके लिए तो कोई रुकावट नहीं हमारे में। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना है। तो ये कर्म के उदय की बातें क्यों जाननी है, तो कर्म के उदय में हाँ शरीर की रचना हुई है, मैं उस रूप मानने लगते हैं, उसमें अपने को अच्छा या अपने को हीन दिन मानते हैं, क्योंकि किसी को लूला शरीर होगा तो अपने को वैसा ही फील करता है, ये उसकी खोटी बुद्धि है। तो इसका नाश तो हम जरूर कर सकते हैं, ज्ञान के द्वारा ही कर सकते हैं। तो कर्म की भी थ्योरी हमको कर्म को समझने के लिए, याद करने के लिए नहीं है, मेरा स्वरूप उससे भिन्न है ये बात हमें नक्की करनी। देखो अभी एक बंद का भी आपको एक फॉर्मूला या उसमें जो बात बनती है, ये जो हमने यहां देखे ना, ये तो उदय की बात है। ये कर्म जो है आयु कर्म कभी कभी बनता है, हमने देखा वो बंथर जब बाकी है तभी बनती है, उसके अलग अलग जो कोई बातें उसकी भी चर्चा हुई थी। और ये सात कर्म तो निरंतर बनते हैं, निरंतर का अर्थ है एक समय का भी अंतर छूटे बिना सात कर्मों का तो बंध होता ही रहता है। अब यहां अरिहंतों की बात नहीं चल रही, सामान्य सबकी बात चल रही। तो सात कर्मों का बंध हो रहा है, तो सात कर्मों में ये कौन कौन से, अभी आयु है वो आघाती कर्म है, वो कभी बनती कभी नहीं भी बनती है। तो साथ में चार घाती कर्म आए कि नहीं आए, वो कब बन रहे हैं, निरंतर हर समय। कब बनेंगे, पुण्य करेंगे तो बनेंगे के पाप करेंगे तो बनेंगे, बहन दोनों समय, शुभ राग हो या अशुभ राग हो, घाती कर्म तो निरंतर बन रहे हैं। और अघाती कर्म में आयु कभी कभी बनती है परंतु बाकी तो बंदे ही रहे हैं। यानी हम पुण्य करना चाहते हैं, क्यों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परंतु उससे घाती कर्म तो सभी बन रहे हैं। और अघाती में दो डिफरेंस होते हैं, अघाती में पुण्य और पाप दो, देखो उसको भी निकालो, इसका भी आगे चार्ट होगा या नहीं है, इसमें पंचलब्धि में है, यहाँ लिखा है ना, हाँ हाँ जरा ये उसी का निकाले क्या,
ये सिर्फ
ये नाम लिखे
हैं, कर्म के नाम लिखे हैं।
हाँ, आगे जरा एक आगे पेज होगा शुभ और अशुभ कर्म की बातें, उसमें लिखी होगी, पहले लिया था शायद,
लिया है।
जो डिफरेंस कहाँ पड़ता है शुभ। देखो हम देखेंगे ये जो घाती कर्म है ना, घाती कर्म में पुण्य प्रकृतियां कितनी है। हाँ बस बस लोग देखेंगे उतना ही देखेंगे। हाँ और थोड़ा ऐसा कर सकते हो वहां के लोग। देखो ये पुण्य और पाप प्रकृतियों का, नहीं नहीं उनकी तरफ करना आप। हाँ पुण्य और पाप प्रकृतियों का बंटवारा हम देखेंगे, जिसको हम कहते हैं ना पुण्य को बंध, पुण्य बांधना है हमें, ऐसे परिणाम करने के हमको पुण्य बांधना है। क्यों? क्योंकि संसार में रुलना है। क्योंकि ये हमारी मान्यता जो है ना, पुण्य अच्छा है, पुण्य अच्छा है ना, क्या बंध अच्छा है, तो जिसको बंध अच्छा होता लगता है उसको तो मोक्ष अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो बंध में ही रहना चाहता है। जिसको संयोग अच्छे लगते हैं तो संयोग क्यों मिले, पुण्य से मिले, तो उसको पुण्य अच्छा लगता है। और पुण्य अच्छा लगता है, पुण्य क्यों आया, तो बांधा पुण्य, तो उसको बंध अच्छा लगता है। तो अभी हम देखेंगे पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है। पुण्य और पाप ये कर्म प्रकृतियों के नाम है, और जिस शुभ भाव के कारण ये पुण्य प्रकृति बनती उसको भी पुण्य कह देते हैं। क्या कहा? पुण्य पाप ये मूल में नाम किसके है, कर्मों के नाम है। तो कौन से पुण्य कर्म है और कौन से पाप कर्म है, तो ये जो पहले घाती कर्म देखे ना हमने, ज्ञान आवरण दर्शन आवरण मोहनी अंतराय, उसके नीचे क्या लिखा है पढ़ो जरा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नलिनी बेन के बाजू में। हाँ आपका नाम क्या बेन, मैं भूल गई। हाँ हाँ क्या कल लिखा है, सभी घाती कर्म, उसमें से कितने पुण्य रूप हो गए, एक भी नहीं। और वो कब बनते हैं घाती कर्म, निरंतर बन रहे। इसका अर्थ क्या है, निरंतर सभी पाप कर्म बन रहे। कौन से, घाती कर्म वाले, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय निरंतर बन रहे हैं, और सभी कैसे है, पाप कर्म है। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो बन रहे कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। तप करेंगे व्रत करेंगे तो क्या होगा, बन रहेगी। कौन से, वो चार की बात कर रहे, तो हमें कुछ नहीं मिलता, कहाँ क्या मिलता वो देखेंगे ना। अभी अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो घाती कर्म सभी पाप रूप है, वो निरंतर बन रहे हैं। शुभ भाव करे या अशुभ भाव करे, घाती कर्म तो बनते ही है।
वो पाप रूप ही है क्यों,
वो पाप जो पुण्य और पाप क्या होते हैं, पाप प्रकृति किसको कहना और पुण्य प्रकृति किसको कहना, तो ये पुण्य और पाप रूप जो भेद है वो अघाती कर्मों में पड़ते हैं। क्योंकि पाप क्यों कहा, कि देखो जीव का स्वभाव केवल ज्ञान है, और उसके ज्ञान की हीनता रूप जो फल देता है वो तो पाप का उदय कह लेंगे हम, पाप प्रकृति है ना वे। अब ये जो कोई हमने उसके जो दर्शन की हीनता, स्वभाव का घात होना, तो इसलिए उसको पाप प्रकृति का, जीव के गुणों में डायरेक्ट उसका संबंध आता है। अब ये जो अघाती, अघाती यानी जीव के गुणों में कोई घात नहीं होता है, तो उसमें दो प्रकार होते हैं, पुण्य प्रकृति भी है कुछ पाप प्रकृतियां भी हैं। तो हमने देखा है साता वेदनीय, जिसमें हम कहते हैं अनुकूलता, हम संयोगों की अनुकूलता होती है उसको हम साता वेदनीय कहेंगे, वो पुण्य प्रकृति है, और असाता वेदनीय पाप प्रकृति है। जैसे नरकों में तो सतत वो असाता वेदनी का उदय चल रहा है तो वो पाप प्रकृति है, देवों में तो साता वेदनी का उदय चल रहा है तो पुण्य प्रकृति का उदय चल रहा है। दूसरी बात कौन सी, आयु में शुभ आयु और अशुभ आयु। शुभ आयु में वो नरकायु, सॉरी नरकायु तो अशुभ आयु है, और देवायु मनुष्य आयु तिर्यंच आयु, तीन प्रकार की वो शुभ आयु कहलाती है। अब जो नाम कर्म में शुभ नाम और अशुभ नाम, ऐसे दो भेद हैं। तो शुभ नाम कर्म ने जो कहे अभी पंचेंद्रिय जाति है और ये मनुष्य गति है, देव गति है, ये शुभ नाम कर्म कहलाएंगे। ऐसे शरीर संबंधी जो कोई है वहां पर, वो सारे ही शुभ नाम कर्म है। और अशुभ नाम कर्म में वो एकेंद्रीय जाति होगी, ये जो कोई सूक्ष्म अपर्याप्त आदि संबंधी जो बंध होते हैं ना, वो सारे अशुभ नाम कर्म है। तो शुभ और अशुभ नाम कर्म का फल किसमें मिलता है, शरीर में मिलता है, शरीर की रचना होती है। जीव को क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। ये व्रत तब सारे बेकार हो गए, शरीर में फल देके चले गए,
कर्म बंद कर दे।
कर्म बंद किया यानी देखो तत्व विचार के बिना, यानी सम्यक दर्शन के बिना जितना सारा जो कोई उसने पुण्य किया है, मिथ्यात्व अवस्था में पुण्य किया। अभी सम्यक दर्शन होने पर क्या क्या होता है उसकी बात बाद में देखेंगे। मिथ्यात्व अवस्था में जितना कोई पुण्य किया उसका फल किस में मिलेगा? घाती कर्म तो सभी पाप रूप बंधे ही बंधे। डिफरेंस कहाँ हुआ? अघाती में। अघाती में क्या हुआ? अघाती में पुण्य प्रकृति बांधी, तो बांधी तो उसने शुभ आयु बांधी, शुभ नाम, उच्च गोत्र और साता वेदनीय बांधा, और उसका उदय जब भी आएगा आगे जल के तभी आएगा। और जो पाप करता है, अशुभ कर्म करता है, हिंसा झूठ चोरी आदि करता है, वो क्या कर रहा है? ये अघाती में सब पाप प्रकृतियां बांध रहा है। तो जो पाप करता है तो दोनों ओर पाप को ही बांध रहा है, और जो पुण्य करता है तो घाती में तो पाप ही है सब, और अघाती में पुण्य कर्म बांधता है। जिसका फल किसमें मिलता है? मोस्टली पुद्गल में,
संयोग
में ही है ना, शरीर है, संयोग है, गोत्र है, तो उसमें सारा फल मिलता है। तो वहां जीव शुभ भाव करे और उसका फल भोगे कौन? संयोग पुद्गल, जिसको कुछ अक्कल नहीं है उसको क्या ज्ञान है? जीव ने ही उन पुद्गलों को, संयोग को अपना मान लिया है। देखिए बात फिर सोचना, पाप करता है जीव नरक में जाता है, उसको संयोगों में कोई रुचि नहीं है, परंतु पुण्य करता है, अच्छे संयोग मिलता है, जीव उसी में उलझ जाता है। तो शास्त्र में कहा ये ऐसा पुण्य, उसको भला कैसा कहेंगे कि वो पुण्य के उदय में वैभव मिलता है, वैभव में जीव को मान बढ़ जाता है और वो उसमें और उलझ जाता है। तो ऐसे पुण्य को हम अच्छा कैसा कहें कि जीव 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 को संसार में रुलाता है। और यहां भी हम देखते हैं, पुण्य करो या पाप करो, शुभ करो अशुभ करो, ये तो घाती कर्म तो बनते ही है। तो इसमें से बंधने में से छुटकारा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा जीव को? आपने पूछा ना, रास्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तत्व विचार करता है तो इसमें से, घाती कर्मों में से, मुनि में जो दर्शन मुनि और चारित्र मुनि है उसमें से जो मिथ्यात्व नाम का कर्म है उसका अनुभाग पहले में पहले ढीला पड़ जाता है और इसका उदय मिट जाता है। तो जीव को मिथ्यात्व भी मिट जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो यहां से उसकी शुरुआत हो जाती है। नहीं तो क्या होता था, अब तक पुण्य करता था, पाप करता था, कभी पुण्य कभी पाप, परंतु मिथ्यात्व को जैसा का वैसा रखा था, क्योंकि तत्व विचार नहीं किया था उसने। तो तत्व विचार के बिना कितना भी करोड़ों भवन तक तप तपे तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका तो संसार चक्र चलता ही रहेगा, जन्म मरण चलता ही रहेगा। उसमें से छूटने का मार्ग क्या है? तत्व विचार। तत्व विचार करने से उसका मिथ्यात्व का उदय भी मिटेगा और बंध भी मिटेगा, सत्ता में अभी भी पड़ा रहेगा मिथ्यात्व। तो उसका बंध और उदय मिट गया है तो उस काल में अन्य भी बहुत सारी 41 प्रकृतियों का वो बंध मिट जाता है और उसका मोक्ष मार्ग शुरू होता है। यहां से उसका बंध कम होता चला जाएगा और पूर्व में बांधे हुए की निर्जरा अधिक चलती जाएगी, वो किसी विधि से होती उसकी बात सब चलेगी भी आगे। तो ये मोक्ष मार्ग शुरू जब हो जाता है वो तत्व विचार से ही होता है, अन्य किसी मार्ग से नहीं होता। इसकी बात अब और हम आगे देखेंगे, अब यहीं रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की जय।